गीता के दूसरे अध्याय से दो श्लोक हैं 47-48। ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार सुना होगा। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुः भू मा ते संगो अस्तु अकर्मे। वो कहते हैं कर्मणि एव अधिकारः ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। गीता के इस श्लोक के हमने बड़े अर्थ सुने होंगे, लेकिन जैसा कि सत्पुरुष कहते हैं कि गीता को सही रूप में कोई सत्पुरुष ही समझ सकता है, इसका मतलब जीवन भर अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले को साफ ये पता लग जाता है कि गीता के अर्थ जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, गीता के अर्थ बदलते रहते हैं। तो सही अर्थ इतना गहरा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे बुद्धि से तो बाहर की बात है। तो अब जब इसका अर्थ है कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, तो सब यही कहेंगे गीता कर्म की प्रेरणा दे रही है, कर्म करो। लेकिन जरा उस दृश्य का विचार करें, जब अर्जुन कृष्ण के सामने खड़ा है, युद्ध भूमि है, और वो जिनसे युद्ध करना चाहता है वही उसके धर्म विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनकी गोदी में वो खेला, वही खेला वो, वही भीष्म पितामह सामने खड़े हुए हैं, सारे भाई बंधु उसके सामने मौजूद हैं। उसके मन में आ रहा है कि इन सबको मारकर मैंने ये उनको मार भी दिया तो मुझे मिलेगा क्या, बहुत बड़ा राज्य मिल जाएगा, उसका सुख भोगूंगा। तो जिनके लिए हमने जीवन लगाया है सुख देने के वास्ते, उनसे हम सुख छीन लेंगे, उनको मार देंगे, उसका उसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई अंदर से कि मैं ऐसे सुख को नहीं चाहता। ऐसे युद्ध को भी नहीं चाहता। हालांकि कृष्ण की दृष्टि में यह उसका मोह है, लेकिन उसकी अपनी दृष्टि में यह ज्ञान है, इसलिए वो कृष्ण से कहता है कि मैं सन्यासी जीवन व्यतीत करूंगा, मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता। लेकिन ज्ञान दृष्टि जिसके पास होती है उसको सत्पुरुष कहते हैं, अर्जुन के पास वो ज्ञान दृष्टि नहीं है, उसका जो विवेक है वो मोह से ग्रस्त है, ये वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन कृष्ण समझ रहे हैं इस बात को, इसलिए वो कह रहे हैं। हालांकि अर्जुन पूर्ण त्यागी है, पूर्ण त्याग करना चाह रहा है, जो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, इससे बड़ा त्यागी आपको कहां मिले। तो कृष्ण समझ रहे हैं कि हाँ वास्तव में ये मोक्ष का पात्र है, और इसके मन के अंदर इस समय वही इच्छा उठ रही है कि मैं इस संसार बंधन में रहकर क्या करूंगा, जहां सुख है ही नहीं, इतने बड़े राज्य मिलने के बाद भी वहां सुख नहीं है, तो संसारियों को छोटी मोटी संपत्ति मिल भी गई, उनको क्या सुख मिलेगा। इसीलिए जब युद्ध से उसकी निवृत्ति देख रहे हैं कृष्ण, तब तो उसको गाइड कर रहे हैं, उसकी पात्रता के अनुसार उसको गाइड कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। तो धर्म के दो मार्ग होते हैं, जैसे महाराज जी का जीवन देखिए आप, बचपन से ही कोई घटना ऐसी नजर आपको नहीं आएगी उनके जीवनी पढ़ने के पश्चात कि उनके अंदर कोई संसार से लगाव था, परिवार से लगाव था, या सुखों से कोई लगाव था। दूर दूर तक ये बात उनके जीवन में आपको बचपन से ही नजर ही नहीं आई। जो बालक विचार करो जरा, स्कूल में पढ़ रहा है, माँ उसको पराठे बनाके दे रही है, मेरे बच्चे को अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन वो पराठे बेचारे गरीब बच्चों को खिला दे रहे हैं जिनको नसीब नहीं थे, उनकी सूखी रोटी खुद खा रहे हैं। माँ कोट सिलवा कर दे रही है उनको, मेरा बच्चा अच्छा लगेगा, ठंड से बचेगा, वो अपना कोट जो है गरीब बच्चों को दे दे रहे हैं, उनका फटा कोट पहन के आ जा रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि बचपन से ही उनके अंदर सुख भोगने की दूर दूर तक कोई इच्छा ही नहीं। और रात और दिन हम सोने में बच्चे गंवा देते हैं, लेकिन महाराज जी रात दिन प्रभु की भक्ति में बचपन से ही गंवा रहे हैं, बचपन से ही इसको खर्च कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे चरित्र होते हैं, यही कहिए ऐसा जो जन्म होता है, इसी की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। अब महाराज जी का जो अधिकार है वो ज्ञान निष्ठा में, सीधा मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको संसार में। एक परसेंट भी किसी भी प्रकार का, चाहे परोपकारी कर्म हो चाहे स्वार्थ कर्म हो, किसी भी प्रकार का कर्म करने में उनके मन की लगन है ही नहीं। ये उनकी बचपन से ही स्थिति है, वो लेके आए हैं। तो ये व्यक्ति यदि अर्जुन की जगह हो और कृष्ण उसके सामने हो तो कृष्ण एक ही बात कहेंगे, तेरा ज्ञान निष्ठा में अधिकार है, कर्म में नहीं। उसके सामने ये उल्टा निर्णय होगा श्री कृष्ण। तो बताइए श्री कृष्ण कर्म सिखा रहे हमको ना, कर्म नहीं सिखा। और हम लोग क्या सीखते हैं, संसारी लोग, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। कर्म किससे करोगे, शरीर से। पूजा कौन करता है, शरीर करता है या जीव करता है? जो जड़ वस्तु है वो पूजा करती है, जो चेतन वस्तु है वो पूजा करती है। हमारे देश बात की समझिए, इसलिए हमने एक स्लोगन बना लिया, वर्क इज वर्शिप। और गीता के अर्थ का अनर्थ कर दिया। अर्जुन जो कर्म करना चाह ही नहीं रहा है, वो यही चीज चाह रहा है जो महाराज जी चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण उसको मने कर रहे हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है। लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, वो मां फलेशु कदाचित, कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार ना हो। बताइए मां फलेशु कदाचन, कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार ना हो। क्योंकि वासना कहां होती है, वासना कर्म में नहीं होती है, वासना कर्म के फल के अंदर होती है। उस फल की प्राप्ति के लिए जिसको हम सुख करके कहते हैं, या यूं कहेंगे मानसिक चैन करके कहते हैं, हमारे मन में जो वासना परेशान कर रही है चैन आ जाएगा उसको। तो हमारा तो हमेशा कर्म फल के लिए होता है। और यहां वो क्या कर रहे हैं, तेरा कर्म में ही अधिकार है और फल में कदापि नहीं। तो ये कैसा कर्म है, ये कहां कहीं कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं उसको। कर्म तो हम फल के लिए करते हैं ना, लेकिन कृष्ण जिस कर्म की बात कर रहे हैं वह फल है ही नहीं। तो बताइए गीता के इस पंक्ति के सही अर्थ को हम क्या सही समझते कभी, कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं, जैसी हमारी धारणाएं हैं, जैसा हमारे मन के अंदर सामाजिक विश्वास बैठा हुआ है, जैसा हमको लोग मिले हैं, समाज मिले हैं, उसके हिसाब से इसके अर्थ भी बदल लेते हैं। इसलिए महाजी भी कहते थे, महर्षि रमण भी कहते थे इस बात को कि गीता को कोई सत्पुरुष ही सही समझ सकता है, यदि सही समझना चाहिए। तो इसीलिए जीवन भर शास्त्र पढ़ने होते हैं और साथ में अपना आंतरिक जो आध्यात्मिक जीवन है वो व्यतीत करना होता है, तब हमको पता लगता है, हर साल आगे बढ़ते हैं कि शास्त्र के अर्थ बदल रहे हैं। जैसे जैसे मेरा आंतरिक ज्ञान, आंतरिक अनुभव, आंतरिक जो है जीवन बदल रहा है, वैसे ही वैसे शास्त्र के अर्थ भी बदलते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को ये ईगो नहीं रखना चाहिए कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं सब चीज ठीक समझता हूं। आज की स्थिति में जिसको ठीक समझ रहे हो, 5 साल 10 साल बाद पता लगेगा, नहीं मैं तो ठीक नहीं समझ रहा था। बात तो असल में ये है। इसीलिए ये शास्त्र जीवन भर सुनने के लिए होते हैं, जीवन भर पढ़ने के लिए होते हैं और जीवन भर अपनाने के लिए होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मान लिया महाराज की जीवनी ही है, मान लिया एक सिंपल सी एक कहानी है, वो लोगों के लिए तो जीवनी कहानी होती है, लेकिन जीवनी कहानी नहीं होती है, सत्य है। जो सत्पुरुष की जीवनी को कहानी समझे या राइटर उसको कहानी की तरह लिख दे तो राइटर गलती कर रहा है और समझने वाला भी गलती कर रहा है, क्योंकि सत्पुरुष का जीवन खुली किताब होती है। इसलिए मां जी कहते थे प्रेमी इनके जीवन को देख के तुम इनके नजदीक आए, तुम्हारे जीवन को देखकर लोग तुम्हारे नजदीक आएंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सत्पुरुष का जीवन खुली किताब होती है। जैसे जैसे आप वाणी पढ़ोगे, जैसे जैसे शास्त्र पढ़ोगे, जैसे जैसे सत्पुरुष का जीवन देखोगे आप, वैसे ही वैसे उसके राज, उनके कर्म करने के राज खुलते चले जाएंगे। और आप साधारण तरीके से जो कर्म सोचते हो आप, वो सत्पुरुष के कर्म होते ही नहीं। तो अब बताइए, जब कर्म में अधिकार कह रहे हैं और फल में अधिकार ही नहीं कह रहे हैं कृष्ण, तो ये कैसा कर्म है? और आगे कह रहे हैं कि मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगो अस्तु अकर्म। और कहते हैं कि कर्म फल में कभी तेरा अधिकार ना हो, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इसका आगे दास कह रहे हैं, यदि कर्म फल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। मां कर्म फल हेतु भू, कर्म फल का हेतु बनेगा, कर्म फल का कारण बनेगा। और यदि कर्म फल, मैंने कर्म फल तो भविष्य में आएगा ना, तो कर्म फल यदि भविष्य में भोगना है, और जैसे कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, युद्ध तो एक तीर लगा डेथ हो गई, और कर्म फल की इच्छा मन के अंदर बच गई, तो उसको पुनर्जन्म होगा नहीं होगा? उस कर्म फल को भोगने के लिए नए शरीर का उसका निर्माण होगा या नहीं होगा? आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार, अध्यात्म विद्या के अनुसार, शास्त्र निर्णय के अनुसार, तो फिर मोक्ष कहां से मिलेगा उसको? अर्जुन को मोक्ष चाहिए, वो किसी भी कर्म के बंधन में रहना नहीं चाहता, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर, सारे दुनिया के सुख छोड़कर, सारे कर्म छोड़कर वो सन्यास लेने को तैयार है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा अभी सन्यास में अधिकार नहीं है, अर्थात तेरा ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है। जिस प्रकार की महाराज जी का था, जिस प्रकार के महर्षि रमण का था, महर्षि रमण भी महाराज जी की तरह आठवीं क्लास पास था। नाइन्थ क्लास में जब वो थे उस समय उनको ये अंदर से प्रेरणा आई, कोई पथिक मिला था वास्तव में, तो उनको अरुणाचल हिल पर, वो अरुणाचल हिल को देख के आ रहा था, तो उसने जिक्र किया था उसको, तो वो कहते थे कि मेरे उस बात को सुनने के बाद अंदर से इतनी गहरी इच्छा उठी कि अरुणाचल हिल तूने जाना। अब देखिए सत्पुरुष का भी शरीर का प्रारब्ध होता है, वो उसका जोर मारता है और उस शरीर से वो कर्म हो जाते हैं, वो प्रारब्ध करवा रहा है, उनकी इच्छा नहीं होती। तो नाइन्थ क्लास में ही घर से झूठ बोलकर, पिताजी की तो डेथ हो चुकी थी, चाचा वगैरह जो भी होंगे उनसे फीस ली उन्होंने और बस्ता लिया अपना और चल दिए। लेकिन अंदर से प्रोग्राम दूसरा था, रास्ते में उन्होंने बस्ता रखा और जितना टिकट के पैसे होते थे उतने पैसे पास में रखे और वहीं सब छोड़ छाड़ के कपड़े में से एक कोपिन फाड़ी, कोपिन बांधी और चल दी। कोई बालक ऐसा कर सकता है? हाँ कर सकता है, तब कर सकता है जो कृष्ण दूसरी बात कहते हैं कि जिसका ज्ञान निष्ठा में अधिकार है, उसको कोई पाप नहीं है। उसने झूठ बोला है, उसने माँ बाप को छोड़ के दुख में छोड़ के चला आया है, कोई संसार का कर्म, कोई संसार का कर्तव्य उसके लिए नहीं है। ये शास्त्र खुद कह रहे हैं, सत्पुरुष खुद कह रहे हैं। ये तभी तक है जब तक हम कर्म के फल को भोगने के लिए तैयार होते हैं, ये तब तक सारे नियम है। जहां आपके कर्म फल के अंदर से ही कोई इच्छा नहीं है, तब आपको किसी भी प्रकार के कर्म का बंधन भी नहीं है, ईश्वर ने आपको मुक्त करना। इसलिए अर्जुन जब कृष्ण के आगे खड़ा हुआ है और कृष्ण उसका कल्याण चाहते हैं। जो कल्याण चाहते हैं तो सही डायरेक्शन तो देंगे उसको, सही मार्गदर्शन तो करेंगे वो। तो वो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तेरा अभी ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है, तेरा कर्म में अधिकार है। इसीलिए कैसे कर्म में? निष्काम कर्म, कर्म कर लेकिन उसके फल की तरफ मत देख। फल के अंदर आशा तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, इसका क्या नतीजा होगा, तेरे मन के अनुकूल हो चाहे मन के प्रतिकूल हो, उसका असर तेरे मन पर होना ही नहीं चाहिए। अब गीता ऐसे कर्म के लिए कह रही है, तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। इसलिए आगे कह रहे हैं कि वो यदि कर्म फल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण बनेगा, कर्म फल प्राप्ति का हेतु बनेगा। जब हेतु बनेगा तो भविष्य में तुझको शरीर चाहिए कर्म फल भोगने के लिए, तो मोक्ष तो कैसे मिल सकता? जिसको कर्म फल की प्रतीक्षा हो उसको मोक्ष कैसे मिल सकता? मिल ही नहीं सकता। महाजी को भी मोक्ष चाहिए था, महर्षि रमन को भी मोक्ष चाहिए था, और कृष्ण इस भेद को जानते। इसीलिए पुनर्जन्म नहीं चाहिए। जब इस देह के अंदर मैं रह रहा हूं और मेरा विवेक इतना स्ट्रांग हो गया, मेरे कर्म इतने शुद्ध हो गए कि मुझको उस किसी संसारी सुख भोग की कल्पना ही नहीं रही मेरे मन के अंदर, अर्थात बुद्धि के अंदर फाइनल निश्चय हो गया कि कर्म फल जो है केवल दुख होता है, या यूं कहिए जीवन की विफलता होती है, या यूं कहिए कि मन की बेचैनी होती है, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको। इसीलिए जो भी जिसकी बुद्धि होश में है, वास्तव में पक्का सत्यदेह जिसके अंदर है, वो यही चाहेगा कि कर्म फल से मुझको कितनी जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। इसीलिए सतपुरुष जब बात करते हैं कर्म की तो निष्काम कर्म की बात करते हैं, कर्म की बात नहीं किया। इसलिए महाराज जी ने जो 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया हमको, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, जरा बारीकी से इस पर विचार करके देखें। संता विलास में इन 5ों पर जो एक एक चैप्टर लिखा है महाराज जी ने, उसको ध्यान से पढ़कर देखें तो क्या प्लानिंग है उस चैप्टर की, कि धीरे धीरे वो मुझको निष्काम कर्म की ओर या निष्कामता की ओर ले जा रहे हैं, ताकि एक अंदर मेरे प्रभु की याद करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रभु के अंदर मैं रम जाऊं और प्रभु की याद में मेरे अश्रुपात होने लगे, संसार की याद ही ना। तो शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, महाजी का भी प्रारब्ध के अधीन था, इसीलिए महाजी चाहते वही स्थिति थे, लेकिन फिर भी आपको जीवनी जैसे पढ़ा होगा तो मूलचंद के समय में ठहरे थे लाहौर जाते समय, तो अंदर से आवाज आ रही है। देखिए वो तो घर छोड़ के चल दिए, वो 13 वर्ष की आयु में ही चल दिए, देखिए अंदर से प्रभु उनको अलर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं भविष्य उनका कि तुझको संसार में भूले भटके जीवों के मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है, किसी को दुख देने के लिए नहीं भेजा गया। तो शरीर प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन जीव फिर भी उस प्रारब्ध से स्वतंत्र हो सकता है यदि वो अपनी कामना से स्वतंत्र हो जाए या सुख से स्वतंत्र। सुख और दुख का जिसके मन पर इफेक्ट निल हो जाए तो वो फिर निष्कामी है। तो महाराज जी ऐसे ही निष्कामी थे, लेकिन फिर भी कुछ कसर बाकी थी, इसलिए प्रभु उनको कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं प्रभु कि तुझ जा, पहले तू अपनी कुछ कमी रह गई है उसको पूरी कर और आगे फिर तेरा ये काम। इसीलिए देखिए महाराज की इच्छा से तो वाणी नहीं आई, महाराज की इच्छा से तो मंत्र नहीं आया, लेकिन मंत्र भी आ रहा है, वाणी भी आ रही है, किसके लिए आ रही है? ये हम अज्ञानी लोगों के लिए आ रही है। तो बताइए प्रभु जो इस समय मेरे अंदर मौजूद है, जो महाराज जी को बोलकर बता रहे हैं, देखिए हम ये बात नहीं सोच रहे कि प्रभु जो अंतर्यामी है मेरे लिए वाणी भेजी है उन्होंने, मेरे लिए सब कुछ भेजा उन्होंने, और मैं उसकी क्या कीमत समझ रहा हूं? संसार के कामों में, परिवार के पालन में सारी जिंदगी खर्च कर दे रहा हूं, ये मेरे दिमाग में कीमत है मनुष्य जन्म की। तो जो मनुष्य जन्म का अभिशाप है, अरे बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, पक्षी भी पैदा करते हैं, पालते भी हैं। महाजी कहते हैं प्रेमी पक्षी देखो कितना होशियार होता है, अंडे देता है, सेता है, बच्चे पैदा होते हैं, उनको दाना भी घोंसले में खिलाता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये उड़ने लायक हो गया, इसके पर निकला है, तो चोंच मार के उसको निकाल देता है, जाओ खुद दाना चुगो, अपने पैरों पे खड़े हो, और हम कलेजे से लगा रखते हैं। तो ये ज्ञान हमारे वास्ते दिया है, पशु पक्षी के वास्ते नहीं है ज्ञान। और हम लोग वही पशु पक्षी वाला कर्म कर रहे हैं, बल्कि उससे भी निकृष्ट कर्म कर रहे हैं। इसलिए बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो, कोई वाणी कह रही है, ये वही ईश्वरी वाणी कह रही है जो महाराज जी के अंदर से उनको बोलकर बता रहे हैं कि तुझको किस कार्य के लिए संसार में भेजा गया। तो इन लोगों को कोई वासना का बंधन नहीं होता, महर्षि को कोई बंधन नहीं था, रामकृष्ण परमहंस को कोई बंधन नहीं था, महाराज जी को कोई बंधन नहीं, कोई वासना नहीं। इसलिए ये मुक्त आत्माएं थी, हमारे मार्गदर्शन के लिए संसार में आई थी और वो मार्गदर्शन किया उन्होंने। तो ये वो कह रहे हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। तो अर्जुन को जब ये बात पता लगी तो फिर वो प्रश्न करता है उनसे आगे, तो वो कहता है कि भाई कर्म फिर मैं कैसे करूं। तो आगे कहते हैं, अच्छा एक बात और भी है इसमें, कहते हैं ते संगो अस्तु अकर्मण। अर्जुन के मन में ये आया, जब मुझको कर्म का फल चाहिए ही नहीं तो कर्म मैं क्यों करूं, युद्ध का इतना भयंकर कर्म मैं करूं ही क्यों। इसका मतलब वो ये कर्म नहीं करना चाहता, वो करना चाहता है ये भी इच्छा है, नहीं करना चाहता ये भी इच्छा है। और निष्कामता तब होती है जब करने ना करने में तेरे मन के अंदर कोई विकार ना आए, मन के अंदर कोई चंचलता ना आए, कोई संकल्प ना आए, तब ये निष्कामता होती है। और फाइनल चीज के लिए, परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर 100% निष्कामता चाहिए। इसीलिए इस बात के लिए भी वो कृष्ण जो है कह रहे हैं, जब अर्जुन कहता है कि फिर आप उसको इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं तेरी कर्म फल की जो इच्छा है, यदि कर्म फल की इच्छा ना करें तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है। मन में ये प्रश्न उठ रहा है, तो कहते हैं इस प्रकार कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति या प्रीति नहीं होनी चाहिए, कर्म ना करने में भी तेरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। अब बताइए ये सत्पुरुष की स्थिति है, लेकिन अर्जुन की स्थिति नहीं है, लेकिन अर्जुन चाह यही स्थिति रहा है। तो इसीलिए सत्पुरुष उसको गाइड कर रहे हैं कि तेरे अंदर यह भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं ना करूं, ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए ये करूं और इसका फल मैं प्राप्त करूं, ये दोनों ही नहीं चाहिए। फिर पूछता है मैं क्या करूं, फिर कैसे कर्म करूं। अब देखिए अगले श्लोक में क्या कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उनमें भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो इस आशा रूप आसक्ति को भी छोड़कर कर। फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है, और उसके विपरीत मतलब ज्ञान प्राप्ति का ना होना असिद्धि है। कहते हैं सिद्ध है असिद्ध हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसी सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर, अर्थात दोनों को समान समझकर या तुल्य समझकर कर्म कर। इससे होगा क्या, कहते हैं वो कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है, योगस्था कुरु कर्माणि कह रहे हैं ना वो, तो कहते हैं समत्वम योग उच्यते। कहते हैं कि यही जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व है इसी को योग कहते हैं, या इसी को समता कहते हैं, या इसी को समता योग कहते हैं। तो मन की निष्काम स्थिति वो स्थिति होती है जब मन के मन जो है वो संकल्प रहित हो जाता है। तो मैं जिसको बुद्धि कहते हैं, जिसके अंदर चेतना है, जो जानता है, जो निर्णय करता है, मैं वही तो हूं, इसलिए मुझको जीव कहा जाता है। तो ये जीव उस ईश्वर के साथ एक हो जाता है, खुद ईश्वर हो जाता है, और वो अवस्था इसकी मोक्ष की होती है। तो गीता जब कर्म का संदेश दे रही है तो वास्तव में ये संदेश है, ना कि वो जो लोग अर्थ करते रहते हैं। ओ जन सकते हैं।